नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 2।
तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मणयो हरिः अंशांशेन चतुर्धाकात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरहि रामलक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विश्व तत्व है। भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि वह सभी एक ही हैं, किंतु विश्व तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:39 पुष्टि की गई है, रामादि मूर्ति शुकला निमेन तिष्ठन। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूप में विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण। और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विश्व तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। रामनवमी के अवसर पर हम आपको कुछ भगवान राम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो महाराज खटवांग के हम जानते हैं वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए। सूर्यवंशी कहा गया है भगवान को, सूर्यवंशी कहा गया है। और कृष्ण चंद्रवंश में आते हैं। तो भगवान की एक तो नित्य लीला होती है और एक नैमित्तिक लीला होती है। नित्य लीला मतलब हमेशा वो लीला हो रही, और नैमित्तिक लीला भी नित्य लीला है लेकिन फिर भी नैमित्तिक है। नैमित्तिक लीला भी नित्य लीला है फिर भी नैमित्तिक है, क्योंकि ऐसी कई लीलाएं हैं जो भगवान के धाम में नहीं हो रही है, अयोध्या में नहीं हो रही है, साकेत धाम में नहीं हो रही है, लेकिन यहां भौम जो धाम है, अयोध्या धाम है, वहां पे लीलाएं प्रकट होती हैं। इस पृथ्वी में वो लीलाएं प्रकट होती हैं। तो उन लीलाओं में और लीलाओं में थोड़ा सा भेद होता है। भेद कोई नहीं है, लेकिन यहां पर नैमित्तिक लीला में भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और अन्य बद्ध जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं में विविधता प्रकट करते हैं। और ये नैमित्तिक लीला ये भी नित्य लीला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जब वो लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, अन्य ब्रह्मांड में तत्काल ही वो लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। इस कारण से भी इसको नित्य लीला कहा गया है। जैसे सूर्यास्त यहां पर होता है तो उसी समय कहीं और वो सूर्य उदय होने लगता है। तो इस प्रकार ये लीलाएं भगवान की लीला है और दिव्य है। जैसे कि भगवान गीता में बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्योपेति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं कि जन्म और कर्म मेरा दोनों ही दिव्य है, मेरी लीलाएं दिव्य हैं, और जो उनको तत्व से जान लेता है वो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन करते हैं अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, प्रजा के साथ, राजा के रूप में हर स्थान पे, और शत्रु के सामने भी वो मर्यादा का पालन करते हैं युद्ध क्षेत्र में। तो इस प्रकार भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान मर्यादा का भंग करते हैं, कृष्ण मर्यादा का भंग करते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं गीता में, कौन त्या प्रति जाना ही ना मे भक्त प्रणश्यति। कि हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कि मैं घोषणा करूंगा तो हो सकता है कि मैं वचन को तोड़ दूं, लेकिन अगर तुम घोषणा करोगे तो वचन का पालन मुझे करना पड़ेगा। लेकिन भगवान राम स्वयं मर्यादा का पालन करते हैं और इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम पुरुषोत्तम यानी कि महाप्रभु केवल लीलाएं नहीं करते हैं बल्कि प्रेम का वितरण भी करते हैं और ये लीलाएं आपस में सब मिली जुली लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान जब लीलाएं करते हैं तो कोई ना कोई उनकी इच्छाएं भी रह जाती हैं जो वो आने वाले प्राकट्य में उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक बार की बात है, ये समय था जब भगवान राम और साथ में सीता, साथ में लक्ष्मण जी, ये सब कहां पे गए थे? नवद्वीप गए। और नवद्वीप गए वहां पर, हम जानते हैं, हम भी गए थे, आप सब गए होंगे, उस द्वीप का नाम है मोद द्रुम द्वीप। में भगवान राम सीता जी के साथ वहां पे गए और वहां पे उन्होंने जब देखा उस द्वीप में, चारों ओर देखा तो मुस्कुराने लगे। तो सीता जी ने प्रश्न किया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो फिर उसके बाद भगवान राम बताते हैं कि मैं आने वाले कलयुग में गौरांग के नाम से जाना जाऊंगा और गौरांग रूप में अवतरित प्रकट होऊंगा और तुम विष्णुप्रिया के नाम से जाने जाओगे। तो विष्णुप्रिया कौन है? सीता है। और लक्ष्मीप्रिया कौन है? छाया सीता है। तो विष्णुप्रिया के रूप में आप प्रकट होंगे और मैं गौरांग महापुरुष के रूप में प्रकट होंगे। और जिस तरह से इस रामलीला में, यानी कि इस लीला में मैं आपका परित्याग करूंगा और आपको मैं राज्य से बाहर करूंगा कोई भी कारण से, और फिर मैं क्या करूंगा, आपकी स्वर्ण मूर्ति बनाकर उसकी मैं पूजा करूंगा, यज्ञ करूंगा। लेकिन आने वाले जो कली काल में क्या होगा, मैं संन्यास लेकर चला जाऊंगा और आप मेरा अर्च्य विग्रह प्रकट करेंगे, धामेश्वर महाप्रभु जिसको कहते हैं, और आप उस अर्च्य विग्रह की पूजा करेंगे। त्रेता युग में मैं आपके विग्रह की पूजा करूंगा और कलयुग में आप मेरे विग्रह की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार नदी धाम में भगवान राम ने इस प्रकार भविष्यवाणी की। और जो घुवक नाम के उनके मित्र थे भगवान राम के, वो भी उनके पार्षद बने गौर लीला में, जिनका नाम था सदानंद भट्टाचार्य, जो ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ था, और वो वहां पर मौजूद थे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे जगन्नाथ मिश्र के घर पे, सदानंद भट्टाचार्य। और बाद में सदानंद भट्टाचार्य को महाप्रभु ने अपना दर्शन भी दिया, राम रूप का दर्शन भी दिया। तो इस प्रकार ये सारी लीलाएं जो है आपस में जुड़ी हुई हैं और भगवान ये लीलाओं के माध्यम से ये साबित करते हैं कि ये उन्हीं की लीला है, ये हमारी लीला नहीं है। भगवान अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है? दिव्य है। जैसे कि जीव बार बार शरीर बदलता है इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उस तरह से भगवान अपने शरीर नहीं बदलते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और अपने आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं और साथ में भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो ये चारों के चारों, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये विष्णु तत्व है। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। संकर्ष बने कौन? लक्ष्मण। वासुदेव भगवान श्री राम, प्रद्युम्न भरत, और उसके बाद शत्रुघ्न अनिरुद्ध। तो ये चतुर्भुज विस्तार है, क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, और सारे विष्णु तत्व है। लेकिन भगवान जो लीलाएं करते हैं तो नर लीला करते हैं और ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि ये तो साधन नर की तरह ही कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से भगवान राम एक राजा के रूप में हमने आपको प्रकट कर रहे थे, इसे कई बार लोग बोलते हैं ये राम दूसरे हैं, ये जो अयोध्या वाले राम है वो राजा है, वो राम दूसरे हैं, वो राम तो क्या है, वो निर्विशेष ब्रह्म है, अव्यक्त है। आप जिस राजा की बात कर रहे हैं वो तो अयोध्यापति है, राजा राम है। इसलिए प्रभुपाद जो है रघुपति राघव राजा राम ये भजन जब गाते थे तो प्रभुपाद इतना इसका उत्साह नहीं बढ़ाते थे गाने के लिए, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग सबसे पहले सिद्धांत को समझे, लीलाओं को समझने से पहले तत्व को समझे, तत्ववेता कि बाब परा कि न्यासी शूद्र केरन हो जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। अगर आप देखेंगे भगवद गीता लेकर, भगवद गीता में तत्व शब्द भगवान ने बहुत जगह पे उपयोग किया है कि नहीं। तत्व तो माम तत्व ज्ञात विश्वते तद अनंतरम भक्त्या माम भी जानाती यावन याशास्मि तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विभति तत्वतः। और कहां कहां पर तत्व है? मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये सत, क्या है फिर उसके बाद? यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम भेति तत्वतः। तो ये तत्व शब्द आपको भगवद गीता में बहुत ज्यादा स्थानों में मिलेगा। तो भगवान बार बार बताना चाह रहे हैं कि मेरे रहस्य को समझो, मेरे आने का रहस्य क्या है, रहस्य को जानने का प्रयास करो। गुह्य ज्ञान परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसलिए भगवान के आने का कारण जब भक्त लोग जानते हैं तो फिर और भगवान के और करीब पहुंचते हैं, तब भगवान की लीलाएं समझ पाते हैं। एक कथावाचक राम कथा करने लगा और कथा के दौरान एक माता श्री जो है रोने लगी, और कथा के उपरांत कथावाचक ने पूछा आप रोई क्यों कथा के बीच में, कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा? मैं तो अपने पुत्र के वियोग में रो रही थी, 14 साल हो गए अभी तक वापस नहीं लौटा वो। राम कथा सुन रहे लेकिन अपने पुत्र का स्मरण हो रहा है। क्यों हो रहा है इस पुत्र का स्मरण? क्योंकि तत्व नहीं जानते हो, सिद्धांत नहीं जानते। कथा तो हो रही है लेकिन सिद्धांत क्योंकि स्पष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान राम की तुलना एक साधारण बद्ध जीव से कर ली। इसलिए हमारे आचार्य लोग, पूर्ववर्ती आचार्य लोग हमें सावधान करते हैं। और राधा कृष्ण की लीलाएं ओहो वो तो बहुत ही ज्यादा गुह्यतम लगती है। और इस भौतिक जगत में जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होता है उसी प्रकार दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सुनने में आता है। और इसलिए प्राकृत अवस्था में इसलिए आचार्य लोग हमें मना करते हैं कि लीलाओं का स्मरण करें, क्योंकि खतरा बहुत है, बहुत खतरा है। प्राकृत वर्ग जो हरिनाम लेते हुए बहुत ही इच्छाओं से भरा होता है, विषय विकारों में उसका ध्यान लगा होता है, निश्चित रूप जब से जब वो लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास करेगा तो फिर उसका संबंध वो अपने अनर्थों से जुड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य लोग इसके लिए मना करते हैं। इसलिए तत्व को जाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है। एक बार की बात है, प्रभुपाद बंबई में जब जुहू का जो मंदिर बन रहा था राधा राज बिहारी के लिए, तो वहां पर प्रभुपाद ऊपर बैठे थे अपने कमरे में, छत पे बैठे थे, तो नीचे हमारे एक महाराज है सोलेन्द्र लोकनाथ महाराज ने अनाउंसमेंट किया कल रामनवमी है, कल हम लोग राम का कीर्तन करेंगे। जैसे आज हमने राम का कीर्तन किया तो प्रभुपाद ने इसको मना किया है, एक आध बार हमने गा लिया तो क्या होगा, उसका कारण क्या है, क्यों मना किया, आप समझने का प्रयास कर। प्रभुपाद ने ऊपर बुलाया, प्रभुपाद ने ऊपर बुलाया महाराज को। प्रभुपाद कहते हैं नो राम कीर्तन ओनली हरे कृष्ण कीर्तन, प्रभुपाद ने कहा। तो प्रभुपाद ने रामनवमी के दिन भी प्रभुपाद ने क्यों मना कर दिया? कारण यह है जब कोई एक भजन गाएगा राम का भजन गाएगा तो दूसरा भक्त भी तैयार हो जाएगा, मैं भी गाऊंगा एक भजन, और तीसरा भी गाएगा, चौथा भी गाएगा, पांचवा भी गाएगा, और उसके बाद फिर एक क्रम बन जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग मार्ग से भटकने लगेंगे और ऐसे भजन भी गाने लगेंगे जिसमें सिद्धांत ही नहीं। तो ऐसे दर्शन को ना प्रसन्न करते हुए जिसमें हम मार्ग से भटक जाएं, आचार्य लोग इसके लिए मना करते हैं। जैसे प्रभुपाद से पूछा किसी ने वृंदावन में कि प्रभुपाल हम लोग राधे राधे करते हैं वृंदावन में, क्या है ठीक है? प्रभुपाद ने कहा ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आचार्य लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आचार्य लोग अगर प्रभुपाल अगर राधे राधे करें तो क्या होगा, फिर तो इस वैश्व समाज में बहुत सारे साहित्य मिलने लगे। कोई राधे राधे अलबेली सरकार करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, और सब जगह पे अलग अलग प्रकार के भजन प्रस्तुत हो जाएंगे और सब हरे कृष्ण महामंत्र को भूल जाएंगे फिर, है ना। इसलिए कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन, है ना, इसलिए बताया गया है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग जब गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि बन के प्रचार करते हैं, तो बहुत सावधानी से सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे जो आने वाली पीढ़ी है वो गुरु परंपरा से जुड़े, आचार्यों से जुड़े। इसलिए भगवद्गीता भगवान कहते हैं आचार्य उपासनम। तो आज जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जो रूप गोस्वामी का जो श्लोक है जो उन्होंने भक्ति साम सिंधु में दिया है, उसी आधार पर ये कथा हम सुनाएंगे और कथा के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे कि ये श्लोक इस कथा में कैसे लागू होता है। क्योंकि हम सब क्या है, रूपानुग है, और राम कथा भी सुने तो उसमें ऐसे सुने कि रूप गोस्वामी के सिद्धांतों के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करें। तो ये है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसका अर्थ क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब है हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित, हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित और आध्यात्मिक इच्छाओं से भी रहित। अब बोलेगा आध्यात्मिक इच्छाओं से भी रहित, ये तो समझ में नहीं आया, तो ये समझ में आएगा इस कथा के माध्यम से। तो भरत और शत्रुघ्न एक बार अपने मामा के यहां पर गए हुए थे, और कुछ समय के बाद जब वापस अयोध्या लौटे, और अयोध्या लौटने के उपरांत उन्होंने देखा कि चारों ओर शांत हो चुका है वातावरण, अयोध्या वासी बिल्कुल शोकमग्न है, चहल पहल नहीं है अयोध्या में, सब दुखी लग रहे हैं देखने में, कोई रो रहा है, कोई शुद्ध अवस्था में है, वियोग भगवान राम से वियोग प्रकट कर रहे थे। और जब वो अपने राज दरबार में पहुंचे और विशेष रूप से माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे तो बहुत स्तब्ध होकर सुनकर, क्या हैरान हो गए सुनकर, क्या सुना उन्होंने कि राम भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास में चले गए हैं। तो ये जो सुना भरत ने, जब सुना, क्या सुना उन्होंने कि भगवान राम वनवास में चले गए हैं और इस कारण से महाराज दशरथ ने भी अपना देह का परित्याग कर दिया है, और कारण भी उनको समझ में आया, तो बस उसके बाद फिर माता कैकेयी के प्रति उनकी जो भावना थी, श्रद्धा थी, सारी टूट गई। एक तरह से बहुत हृदय में उनके लिए ग्लानि से प्रकट हो गई माता कैकेयी के लिए, कि माता कैकेयी ही कारण बनी। इस कारण से इसके उपरांत महाराज भरत ने माता कैकेयी को मां करके पुकारना बंद कर दिया, या तो राजमाता कहते या फिर महारानी कहते, लेकिन माता करके कभी नहीं पुकारा उसके बाद। तो भरत उन्होंने क्या किया, कौशल्या माता कौशल्या और साथ में वशिष्ठ मुनि को संबोधित किया, उनके पास गए और प्रयास किया उन्होंने कि भगवान राम को वापस लाया जाए, अयोध्या वापस लाया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, भगवान राम के जाने के बाद वही सबसे बड़े थे। तो उन्होंने ही फैसला करना था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि राम चले गए हैं और पीछे कोई राजा नहीं है, सिंहासन में, राज सिंहासन में कौन बैठेगा, इसका फैसला तो करना ही होगा। और साथ में महाराज जनक भी अगले दिन सभा बुलाएंगे। तो भरत सबसे पहले माता यशोदा के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की माता कौशल्या से यशोदा ही चल रहा। तो भरत जाए सबसे पहले माता कौशल्या के पास गए और प्रार्थना की कि राम आपसे प्रेम करते हैं और हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, निश्चित रूप से आपको भी वियोग हो रहा होगा, आपको भी विरह हो रहा होगा और हम सब चाहते हैं कि वो वापस आए। मेरी आपसे प्रार्थना है कृपा करके आप उनको वापस लेकर आए और उसे कहें कि यह अयोध्या के ऊपर राज्य करें। तो माता कौशल्या ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी ये चाहती हूं जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा सुझाव धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करो, राम की परिस्थिति भी समझो, क्योंकि राम भी तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, वो भी तो धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा है और तुम दोनों ही धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे हो। मुझे क्षमा करना, मैं उससे प्रार्थना करूंगी भी तो वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार भरत फिर से दुखी हुए और उसके बाद अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के पास गए। तो वशिष्ठ मुनि के पास जब गए फिर से उन्होंने प्रार्थना की, अगर आप आज्ञा करेंगे, राम को आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से वह वापस आ जाएंगे और इस जब वो वापस आएंगे तो निश्चित रूप से अयोध्या वासी क्या होंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, सबको खुशी होगी। तो वशिष्ठ मुनि ने भी इसी प्रकार का उत्तर दिया जिस प्रकार माता कौशल्या ने दिया। उन्होंने कहा कि राम के बदले अगर तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर मैं राम को अयोध्या वापस ला पाऊंगा। वशिष्ठ मुनि ने ऐसा कहा, लेकिन किसी को तो जाना पड़ेगा और आप जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तो भरत ने बहुत उत्साहित होकर स्वीकार किया, अपने गुरु की बात को माना और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा राम के समक्ष। वशिष्ठ मुनि ने जब भगवान राम को बताया कि आप चलें वापस अयोध्या चलें, आपके बदले भरत आ जाएंगे यहां पर, राम ने कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता। वो अपने फैसले में बिल्कुल अड़िग रहे, उन्होंने अपना फैसला बदला नहीं। और उसके बाद कुछ समय के लिए भरत सोचने कि क्या करें, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है, मुझे महाराज जनक के पास जाना पड़ेगा, उनकी पत्नी माता सुनैना देवी के पास मैं जाता हूं। और वहां पे गए और वहां जब पहुंचे सभा में तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी बेटी के बारे में चिंता नहीं है, उनका कोमल शरीर है, अभी युवावस्था में है, जंगल में चले गए हैं, कि आप नहीं चाहते हैं कि वो वापस आए, और इस कारण से देखिए अयोध्यावासी सारे दुखी हैं, आपको कुछ करना हो। तो माता सुनैना उत्तर देती है, जो आप कह रहे हो वो मैं जानती हूं और मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं, लेकिन आप जानते हो कि महाराज जनक मेरे पति जो है बहुत सख्त हैं, धर्म के नियमों का पालन करते हैं, वो धर्म के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और वो तो दोनों तरफ की बातें सुनेंगे और तभी फैसला देंगे, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी का। महाराज जनक को ऐश्वर्य का ज्ञान था, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान था, ऐश्वर्य का मिश्रण है अयोध्या में, ढाई रस बताया जाता है अयोध्या में, ढाई रस, शांत रस, दास्य रस और सख्य रस वहां में प्रारंभ होता है, जिसमें ऐश्वर्य का मिश्रण होता है, विभीषण हो गए, बाली हो गए, जिस तरह से ये मित्र है भगवान राम के, लेकिन ऐश्वर्य का मिश्रण है, मर्यादा का मिश्रण है। मित्र होने पर भी ये राम के कंधे पर चढ़ नहीं चढ़ सकते हैं, उनके साथ खेल नहीं सकते हैं। ब्रज में तो कृष्ण को मुर्गी बना देते हैं, है ना, उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन भगवान राम के साथ इस तरह से नहीं किया जा सकता है, उनके कंधे पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो वहां पर सख्य रस क्या है, प्रारंभ होता है, ऐश्वर्य का मिश्रण है, लेकिन ब्रज में ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं है। तो इस प्रकार माता सुनैना ने उत्तर दिया, तो जनक महाराज के बारे में बताया कि महाराज जनक जो है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन महाराज जनक जिनको ऐश्वर्य का ज्ञान था, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे लगता है कि उनको तो कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, उनको तो कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य का ज्ञान था उनको, वो जहां भी होंगे संतुष्ट होंगे, जंगल में भी है तो वहां संतुष्ट होंगे, उनका कोई बिगाड़ सकता है क्या, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वनवास लिया तो क्या हुआ। तो भरत फिर से दुखी हुए। फिर अगले दिन वशिष्ठ गुरु जो है, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने फिर से सभा बुलाई थी और समय भगवान राम के पास गए थे और वहां सभा बुलाई, और एक तरफ राम थे सीता जी के साथ बैठे थे और दूसरी ओर भरत बैठे थे, और वहां पे अयोध्या वासी भी पहुंचे हुए थे। कितना प्रयास किया जा रहा है, देखिए भरत के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है राम को वापस लाया जाए। और महाराज जनक को बीच में बिठाया गया ताकि वो अपना फैसला दे सके। आप सबसे प्रार्थना, कृपा करके मंदिर में मोबाइल फोन बंद कर दें। सबसे अच्छा तरीका तो होगा कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम कहीं जमा कर दें। आप तो जानते हैं कलयुग की बहुत बड़ी बीमारी है। तो इस प्रकार महाराज जनक को बिठाया गया, और क्योंकि सब जानते थे कि महाराज जनक तो जनक किसी से के साथ पक्षपात तो नहीं करेंगे, निष्पक्ष होकर वो अपना फैसला लेंगे महाराज जनक। महाराज जनक उस सभा में बैठे थे तो सबसे पहले उन्होंने पूछा भरत से, तुम्हारा क्या प्रस्ताव है, आप पहले बोलो। तो भरत ने कहा, मैं तो केवल ये चाहता हूं कि किसी ना किसी तरह से राम को वापस लाया जाए। 14 साल के लिए वो रहेंगे वन में, हमारा होगा क्या, और वापस लाया जाए राज्य में। उनके पिता ने उनको आज्ञा दी थी एक विशेष परिस्थिति के कारण, और महारानी कहके भी प्रभावित हो गई, उन्होंने भी उस फैसला में वो भी शामिल थे। लेकिन इसको अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष कारण है उनका वन जाने का, कोई विशेष उद्देश्य तो नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो राज सिंहासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं राजा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। और प्रमाण देखा जाए, हर प्रकार का सबूत देखा जाए, तो राम ही वास्तव में असली राजा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सारी प्रजा उन्हीं को चाहती है, अन्याय होगा अगर उनको जंगल भेजते हैं और उनको ये राजा की पदवी नहीं देते। तो महाराज जनक चुप रहे, उन्होंने राम की ओर देखा, भगवान राम की ओर देखा, और उनसे कहने के लिए कहा, आपने तो सुना भरत ने क्या कहा, आप तो जानते हैं कि मेरे पिता सहमत थे जब मुझे वनवास के लिए वन जाने के लिए कहा। माता कैकेयी ने बोला कि इनको जंगल जाना होगा 14 साल, तो उस समय क्या हुआ, महाराज दशरथ जो है वो चुप थे, बिल्कुल मौन अवस्था में थे, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। और अगर मौन कहीं रहता है तो हमने तो सुना है मौनम स्वीकृति लक्षणम, महाराज दशरथ ने कुछ कहा नहीं उस समय, इसलिए मैंने तो यह समझ लिया कि महाराज दशरथ मेरे पिता की आज्ञा है। और अब मैं क्योंकि यहां पर आ चुका हूं और मेरे पिता वो शरीर छोड़ चुके हैं, उन्होंने देह का परित्याग कर दिया है, और अभी वो ऐसे भी नहीं है, वैसे भी वो शांत हो गए हैं, मौनम सुकृति लक्षणम, तो इस कारण से अब मैं फैसला नहीं बदल सकता अपना। कौन बोल रही है, राम बोल रहे हैं। तो महाराज जनक चिंता में पड़ गए कि क्या फैसला सुनाया जाए, बड़ी विकट परिस्थिति है। तो महाराज जनक चुप रहे और शांत होकर अपनी उन्होंने आंखें बंद कर ली, उन्होंने ध्यान लगाया अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाया। महाराज जनक के गुरु जानते कौन है, स्वयं शंकर है, भगवान शंकर है, उन्होंने ध्यान लगाया। और ध्यान से जब वापस आए तो गंभीरता से बोले, भरत ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने बात कही है, और प्रेम के कारण वो ऐसा कह रहे हैं, उनका प्रेम श्री राम के लिए बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है, सागर के समान। लेकिन जानते हो भगवान राम की जो मर्यादा है, धर्म के सिद्धांतों का जो पालन करते हैं, धर्म के नियमों का जो पालन करते हैं, वो पहाड़ के समान है, वो पहाड़ के समान है। और अब मुझे लगता है कि वो मर्यादा का जो पहाड़ है इस प्रेम सागर में डूब गया है, इस प्रेम सागर में डूब गया है। और जब सुना, क्योंकि प्रेम सागर में डूब गया है, अब राम को वापस आना चाहिए भरत के प्रेम के कारण। तो जैसे ही सुना, सब अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए, सारे उनके पार्षद प्रसन्न हुए, भरत भी प्रसन्न हुए, सब लोग प्रसन्न हुए, सब लोग जय जयकार करने लगे, जय श्री राम,
जय श्री राम।
तो आनंद छा गया चारों तरफ, आनंद से भर गए सब लोग। लेकिन महाराज जनक से आगे और भी कुछ कहना चाहते थे, बात पूरी नहीं हुई थी उनकी। महाराज जनक ने कहा भरत का प्रेम सागर के समान है, भरत का प्रेम सागर के समान है, भगवान श्री राम, राम की मर्यादा पहाड़ के समान है। सागर में तो डूब गया वो पहाड़, लेकिन अपनी जगह से हिलेगा नहीं वो। समुद्र में, सागर में डूबा जरूर है, लेकिन वो स्थान से हिलेगा नहीं। तो क्या किया जाए फिर? तो भगवान राम अपना फैसला बदलने वाले नहीं है, अपना फैसला बदलने वाले नहीं है, वो बिल्कुल अड़िग है अपने, अटल है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये तो रीत रही है, रघुकुल की रीत रही है। रघुवंश में जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने प्राण त्याग दिया, लेकिन वचन का भंग नहीं किया, मर्यादा का भंग नहीं किया। और जहां तक भरत की बात है, जहां तक तुम्हारी बात है, महाराज जनक ने बोला तुम्हारा प्रेम बहुत प्रबल प्रेम है, और जब प्रेम की बात आती है तो उसमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं, कोई विधि विधान लागू नहीं होते हैं। लेकिन एक बात को समझने का प्रयास करो भरत, तुम वास्तव में प्रेम करते हो भगवान से या राम से? तुम्हारा जो प्रेम है, अगर प्रेम है वास्तव में, तो प्रेम तो प्रेमी की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्या उनकी इच्छा के अनुसार तुम्हारा प्रेम है? तो ये बताना चाह रहे थे रूप गोस्वामी, क्या बोल रहे? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्छम। इसको आप और ध्यान समझने का प्रयास करें। तो मेरा प्रश्न भरत से यह है कि तुमने समझने का प्रयास किया भरत कि राम क्या चाहते हैं, या केवल अपनी इच्छाओं को ही तुम लाद रहे हो सिर्फ? तुमने ऐसा तो नहीं सोचा कि अगर मैं सफल हुआ तो ये अयोध्यावासी जो है मेरी निंदा करेंगे, जब वापस अयोध्या जाऊंगा राम को लाने में सफल रहे, इस कारण से तो नहीं तुम सबके पीछे जा रहे हो बार बार? जनक के पास, महाराज जनक के पास, मेरे पास आए, अपने गुरु के पास गए, और उसके बाद महाराज जनक की पत्नी माता सुनैना देवी के पास गए, सबके पास जा रहे हो, इसलिए तो नहीं जा रहे हो कि वापस अयोध्या जाओगे और अयोध्या जाकर तुम्हारी निंदा होगी? तो इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि जो राम, जिससे राम प्रसन्न होते हैं, वो ही असली प्रेम है। जब इस प्रकार सबने सुना, जब भरत ने सुना, तो ऐसा लगा कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो, और ऐसा लगा कि उनके शरीर में कंपन सी दौड़ गई हो, एकदम से घबरा के स्तब्ध हो गए, धक्का लगा उनको भरत। महाराज जनक कहने लगे कि अब आप सोचो क्या करना है, आपने ही फैसला करना है इसका कि क्या करें। तो भरत जो है बहुत दुखी हुए और राम के पास गए बड़ी गंभीरता से। तो राम ने कहा भरत से, भरत तुम्हारी विजय हुई, तुम जीत गए, तुम चाहते हो ना कि मैं राज्य करूं? मैं राज्य करूंगा, मैं राजा बनता हूं, लेकिन मेरी ये तुम्हारे से प्रार्थना है। अब मैं राजा के रूप में तुम्हें बोलता हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, क्योंकि मैं राजा हूं मेरे मार्गदर्शन में तुम्हें चलना है। क्या करना होगा तुम्हें? मुझे जंगल जाने दो, मुझे वन में जाने दो, और तुम जाओ वापस, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, और जब तक मैं जंगल में हूं तो मेरे बदले तुम क्या करना? राज्य करना, तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर राज्य करना, राज्य का कार्यभार संभालना। तो भरत ने स्वीकार किया, क्योंकि उनको खुशी भी हो रही थी, साथ में दुख भी हो रहा था। खुशी इसलिए कि कम से कम राम ने राजा का पद तो स्वीकार किया, लेकिन दुख इस बात का कि राम अभी भी वापस नहीं आया अयोध्या, अभी भी वो दूर है। तो इस प्रकार, क्योंकि जब जहर भी पीना पड़ता है प्रेम के कारण, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। शिव जी का प्रेम देखिए भगवान के लिए। भगवान ने उनको एक बार कहा हाल हाल पी जाओ, पी गए। अब कोई बोले ये कौन से भक्ति का अंग है, ये भक्ति का अंग क्या है, ये प्रेम है। जब प्रेम होता है तो सारे भक्ति के अंग वहां पर आ जाते हैं। जहां प्रेम होता है जितने भी अंग हैं भक्ति के, 64 भक्ति के अंग हैं, वहां पर शामिल होते हैं। वहां ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये भक्ति का कौन सा अंग है, जहर जहर पीना कौन सा भक्ति का अंग है, प्रेम है ये। प्रेम के कारण शिव जी ने जो हालात जहर पी लिया, नहीं निकल गए। इस प्रकार भक्तों को भी कई प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। अपने गुरु के लिए, भगवान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अलग अलग शिष्यों को प्रभुपाद ने भेजा अलग अलग स्थानों में प्रचार के लिए, और वो लोग गए क्योंकि उनका उनका प्रेम था प्रभुपाद से, अपने गुरु से प्रेम था। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरी आय किया आरोना कोरी मने आशा, और कोई आशा नहीं थी उनको स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, वो गोलोक वृंदावन जाएंगे या नहीं जाएंगे, ब्रज की लीला में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे, उनको मंजरी स्वरूप या गोपी का स्वरूप प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम नर्क चले जाएं, हमारे नर्क जाने से अगर गुरु प्रसन्न है तो वही प्रेम है। ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, आरो न कोरिए माने आश। गुरु की जिम्मेदारी होती है वो शिष्य को धाम ले जाए, लेकिन शिष्य की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है, सेवा, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए शिष्य कि गुरु की इच्छा के अनुसार शिष्य सेवा करे, वो धाम जा पाए या ना जा पाए, स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो या ना हो पाए। इसलिए ठाकुर भक्तिवत क्या कह रहे हैं भजन में, वो कह रहे हैं कि आप मुझे कीड़े के शरीर में भी मुझे जन्म दे दे तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक भक्त के घर में जन्म दे, मुझे प्राप्त हो कि कम से कम वहां मुझे उच्चिष्ट भाव महाप्रसाद तो मिले, भक्तों का सानिध्य ना छूटे बस। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं जब शिष्य दीक्षा लेता है, भक्त दीक्षा लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है नर्क जाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है नर्क जाने के लिए शिष्य, क्योंकि उसको नर्क भी जाना पड़े तो उसको तैयार रहना पड़ेगा, यह सोचकर एक भक्त जो है वो दीक्षा ग्रहण करता है, नहीं तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए फिर उसको, ये इतनी गंभीर बात। हाँ। तो भरत जो है उन्होंने स्वीकार किया, और इसी प्रकार जब एक बार कैकेयी से भी प्रार्थना की थी बचपन में, राम ने बचपन में कैकेयी से प्रार्थना की थी, क्या प्रार्थना की थी कि आप मुझे राज्य से अलग कर दीजिएगा और भरत को राजा बनाइएगा। तो उस समय माता कैकेयी का हृदय पिघला था जब उनका उनको संग नहीं प्राप्त हुआ था, किसका, मंथरा का, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत्संग के कारण कैकेयी की हालत हुई। नहीं तो जब बचपन में राम ने सब बोला तो उनका हृदय पिघल गया, वो घबरा गए थे, धक्का लगा उनको, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन राम ने कहा कि आपको ये जहर पीना होगा क्योंकि ये पूरे संसार के कल्याण के लिए, उपकार के लिए है, और यही मेरे आने का उद्देश्य है, इसलिए मैं राज्य छोड़ के जाऊंगा। तो भरत ने राम का मुकुट संभाला, उनकी चरण पादुका संभाली और उन्हें स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप जब तक नहीं आएंगे तो मैं राज्य का कार्यभार देखूंगा। तो भरत वापस पहुंचे, लेकिन भरत जो है वो अयोध्या के भीतर नहीं गए, अयोध्या के बाहर ही रहे, अयोध्या राज्य में थे लेकिन अंदर भीतर नहीं गए, शहर में नहीं गए, नंदीग्राम नामक गांव में रहे कुटिया बनाकर। और जिस तरह से राम रह रहे थे एक वनवासी के रूप में, उसी प्रकार भरत भी रहने लगे, जटाओं को धारण कर लिए, कंदमूल शाखा और फल केवल खाने लगे, और साथ में क्या करने लगे, उस चरण पादुका की वो पूजा करने लगे जो भगवान राम ने दी थी, से ली थी उन्होंने, उसकी पूजा करने लगे, चरण पादुका की आरती उतारते और चरण पादुका को भोग लगाते, और जब भी उन्होंने फैसला करना होता मंत्रियों के साथ तो चरण पादुका से विचार विमर्श करके फिर वो फैसला देते। ये था उनका प्रेम राम के लिए। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, यह है उत्तमा भक्ति, यह है उत्तमा भक्ति। उनकी इच्छा भौतिक तो नहीं थी, भगवान राम को वापस अयोध्या लाने की जो इच्छा थी भरत की वो भौतिक इच्छा नहीं थी, आध्यात्मिक इच्छा थी, लेकिन फिर भी उस आध्यात्मिक इच्छा का परित्याग किया। क्यों? क्योंकि क्या होना चाहिए? अनुकूल कृष्णानुशीलनम, जो फेवरेबल है। फेवरेबल क्या है? जो राम को, जिसमें राम प्रसन्न होते हैं, जिसमें गुरु प्रसन्न होते हैं, वो है अनुकूल कृष्णानुशीलनम, अनुशीलनम। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं अनुशीलनम का मतलब है कल्टिवेशन, कृष्ण भावना का अनुशीलन किस तरह से किया जाए जिससे प्रसन्न होते हैं गुरु, और वही उत्तमा भक्ति है। और आज के समय में हम देखेंगे लोग चाहते तो हैं कि हम राग मार्ग में जाएं और राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें, जिस प्रकार वो प्रेम जागृत करें जिससे राधा रानी और स्वयं कृष्ण को हम लोग अपने प्रेम से नियंत्रित कर सके। हम वो प्रेम चाहते हैं, है कि नहीं? अपने प्रेम से हम श्रीमती राधा रानी को प्रभावित करना चाहते हैं, कृष्ण को प्रभावित करना चाहते हैं, उनको काबू में लाना चाहते हैं, जिस तरह से माता यशोदा कृष्ण को बांधते हैं, वो प्रेम हम लोग चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यत कुतो भी लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। लोभ, लोभ जागृत करना पड़ता है। तो उस लोभ की स्थिति में कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए अन्य अभिलाषिता शून्यम होना पड़ेगा। जब तक अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होंगे, वो लोभ जागृत नहीं होगा, और लोभ जब तक जागृत नहीं होगा, इस मार्ग में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राग मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा जब तक लोभ नहीं हो। विश्वराज के ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है राग वर्तम चंद्रिका। यह ग्रंथ प्रारंभ ही होता है लोभ से। विश्वनाथ जी ठाकुर उस ग्रंथ के पहले पेज में लिख रहे हैं, लोभ के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये बताते हुए कि लोभ है वास्तव में मूल आधार राग, राग वार का, और लोभ के बारे में वर्णन शुरू करते हैं, वहीं से वो ग्रंथ प्रारंभ होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, भक्ति इज ऑल्सो चीप, है ना, कि कोई जाए राधा कुंड में जाए या ब्रज में जाए, कोई एकदम से कोई आके बता दे कि आपका स्वरूप यह है, और हम तो एकदम से तरल तत्कालिक गोलोक पहुंच जाए, इट्स ऑल्सो चीप। इसलिए आचार्य लोग स्वयं आकर यहां पर क्या करते हैं, तपस्या करके दिखाते हैं, कष्ट उठाते हैं, उनको क्या आवश्यकता है। लेकिन हम जैसे जीवात्माओं को शिक्षा देने के वियोग, विप्रलंब, विरह, ये भगवान राम ने दर्शाया अपनी लीला में। क्या विप्रलंब दिखाया, विरह दिखाया? सीता से विरह। कई कारण उसके, प्रभुपाद बताते हैं कि पुरुष का अगर स्त्री से आकर्षण होगा, आसक्ति होगी, या स्त्री की आसक्ति होगी पुरुष से, तो किस प्रकार का कष्ट सहना पड़ेगा, यह दिखाया। लेकिन वास्तव में क्या था? सीता तो स्वयं उनकी अंतरंगा शक्ति है, तो उनसे वियोग तो हो ही नहीं सकता वास्तव में। शक्ति को शक्तिमान से कभी अलग नहीं कर सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। लीलाओं में इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। और जो प्राकृतिक लीला होती है, इसमें जो वियोग होता है वो बहुत लंबे समय का होता है। कृष्ण भी ब्रज छोड़ के गए लंबे समय के लिए अपना विस्तार, बहुत लंबे समय तक कृष्ण ने ब्रजवासियों को छोड़ा। इसी तरह से राम जो है सीता जी को लेके तो गए, लेकिन वहां जाकर भी फिर से बिछड़ गए। तो ये वियोग ज्यादा दिखाई पड़ता है भगवान की लीलाओं में। यह दिखाने के लिए भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं साधकों को, हम जैसे भक्तों को, कि हमारे अंदर जब तक भगवान से विरह नहीं उत्पन्न हो रहा, तो इसका मतलब हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे। हरि नाम लेते हैं तो वियोग, विरह किससे होना चाहिए? कृष्ण से होना चाहिए। लेकिन जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमें विरह होता है विषय विकारों से, माया से विरह होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और इससे संकेत मिलता है कि हम अभी भी संसार में हैं, अभी भी हम लोग संसार में हैं, अभी तक हमने नाम नहीं लिया भगवान का, केवल नाम अक्षरों का उच्चारण किया है, क्योंकि जो वास्तव में नाम ले रहा होगा उसको निश्चित रूप से विरह होगा और मिलन की भी अनुभूति वो करेगा। यही है हरे कृष्ण महामंत्र, जिससे विरह भी प्रकट होता है और मिलन भी दिखाई पड़ता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इतना अनमोल धन है जो चैतन्य महाप्रभु दिया है, इसमें संपूर्ण लीलाएं जो है इसमें मौजूद है। ये है वास्तव में भजन का रहस्य। हमारी जो माला है, जप माला है, इसमें संपूर्ण गोलोक धाम है, आध्यात्म जगत जो है इसमें निवास करता है। गोलोक वृंदावन, वृंदावन मथुरा द्वारका अयोध्या सब हमारे भीड़ बैग में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में रहिए। अगर वास्तव में अगर आप शुद्ध नाम ले रहे हैं तो इसी नाम को लेते हुए तत्काल ही जो अयोध्यावासी है, भक्त है, राम के भक्त है, वो तत्काल ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। रामदास नाम के भक्त है दक्षिण भारत में, महाप्रभु उनसे मिले। रामदास के जब घर पे गए तो देखा कि रामदास रो रहा है, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो महाप्रभु ने पूछा कि क्यों रो रहे आप, और देखो देखो सीता के साथ क्या किया, रावण लेके चला गया सीता को, बचाओ बचाओ, कोई तो हो उनको बचाने वाला। इस प्रकार वो रो रहा है, वो भक्त रो रहा है, रामदास रो रहे हैं। तो महाप्रभु उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर महाप्रभु वहां से चले जाते हैं और एक जगह स्थान में सुनते हैं, कुरु पुराण से वहां पर कथा चल रही होती है, और कुरु पुराण में बताया जा रहा है कि वास्तव तो में तो रावण तो छाया सीता को ले गया था, वो तो सीता को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो कुरु पुराण लेके आते हैं महाप्रभु रामदास के पास, देखो देखो रामदास, देखो ये कुरु पुराण में दिखा हुआ है कि रावण तो छाया सीता को ले गया था, उसने तो सीता का कभी स्पर्श ही नहीं किया। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है हर प्रकार के भक्तों का आदर देते हैं। ये यथामाम प्रबद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, जो जिस रूप में भगवान को ध्यायेगा, जो जिस रूप में भगवान को चाहेगा, भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। और इसलिए मुरारी गुप्त को जब समझाने का इतना प्रयास किया, बहुत प्रयास किया भक्तों ने, महाप्रभु ने स्वयं प्रयास किया, मान भी गए, लेकिन जब अपने घर पर पहुंचे और फिर से उन्होंने दर्शन किया, अपने इष्ट का दर्शन किया, अपने स्वामी का दर्शन किया, तो पूरी रात रोते रहे मुरारी गुप्त। और प्रातःकाल जब उठे तो महाप्रभु के पास पहुंचे, महाप्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं आपके चरणों में अपराध न कर बैठूं, एक तरफ तो आपकी आज्ञा है, दूसरी तरफ मेरा प्रेम है राम के लिए, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चिंता ना करो मुरारी गुप्त, तुम हो रामदास, तुम हो रामदास, उनके माथे पर लिख दिया, तुम हो रामदास, तुम हनुमान हो। और हनुमान बहुत प्रसन्न है जहां पर है, उनको वृंदावन जाने की इच्छा नहीं होती, वो राम के पास ही रहना चाहते हैं। इसलिए भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम अपराध न कर बैठे। अगर कोई राम का भक्त है तो वो राम का भक्त है, उसकी श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास ना करें, अपराध लग जाएगा। क्योंकि विश्व तत्व में कोई भेद नहीं है, भेद है रस में। वही तो भगवान कृष्ण है जो राम के रूप में आ रहे हैं, वही पूर्णिमा का चांद है जो अर्धचंद्र के रूप में प्रकट होता है, अलग अलग कलाओं में प्रकट होता है पूर्णिमा का चांद, वही परम भगवान श्री कृष्ण है। देखने में लगता है कि आ तो चांद अधूरा लगता है, पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन है तो वही चांद। इसलिए भगवान राम के रूप में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो संपूर्ण कलाओं को प्रकट नहीं करते हैं, संपूर्ण रसों को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन है तो भगवान कृष्ण ही कहीं विस्तार। इसलिए तत्व में कोई भेद नहीं है। कविराज गोस्वामी ने स्पष्ट लिखा है चैतन्य चरितामृत, तत्व में जो भेद करेगा वो अपराध करेगा, रसों में भेद है। तो इस प्रकार कोई भी हम लोग ब्रज में स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमें यहीं पर उसका अभ्यास करना पड़ेगा अपने गुरु के साथ। ये श्लोक को हमें लागू करना पड़ेगा अपने गुरु के चरणों में। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम। भक्तिवर ठाकुर ने भजन में बड़ा सुंदर लिखा है, भक्तिवर ठाकुर लिखते हैं, मैंने अपनी समस्त इच्छाएं आपकी इच्छाओं के साथ मिला दिया है, मैंने अपनी इच्छाओं को अपने आपकी इच्छाओं के साथ मिला दिया है, अब आपकी इच्छा के अनुरूप ही मैं चलूंगा और उसमें कोई भेद नहीं है, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा में कोई भेद नहीं है, और जैसी आपकी इच्छा है वैसी ही मेरी इच्छा है। ये नरोत्तमदास ठाकुर बोल रहे हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या अरुणा कोरिए मने आशा। और ऐसा करने से क्या होगा, नर्तन दास ठाकुर फिर से आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो भी आशाएं रही हैं वो सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ये प्रसादे उनकी कृपा से पूरे सर्व आशा सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन पहले क्या बताया है, चित्ते ते कोरिया है क्या, ये पहला कंडीशन है। तो इस प्रकार माता कहकी उसके बाद पहुंची उनके पास। माता कहकी जो है बहुत कष्ट पा रही थी, उनको यह अनुभव हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, दुखी किया राम को, भरत को, सबको दुखी किया। महाराज दशरथ भी इसीलिए देह का परित्याग कर गए उस दुख के कारण। तो वो पहुंचे भरत के पास, तो भरत उस कुटिया में रह रहे थे, पालकी में बैठकर आए। कहके उन्होंने कहा कि बताइए जाकर कि मैं आयो। तो भरत मिलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बताया कि वो दूर से चल के आए हैं, मिलने के लिए आए हैं स्वयं। तो भरत कहते हैं कि ठीक है, महारानी कहके से कहो कि वो आ सकती है अंदर, भरत कहते हैं। तो माता कहके बोलते हैं क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, अज्ञानता में थी मैं, अंधकार में थी, मुझे क्षमा कर दो, कम से कम एक बार तो मां करके तो पुकारो। कहके बोलते हैं भरत से, भरत कहते हैं इस कड़वाड़ को तो सहना पड़ेगा, ये कभी ये शब्द मैं दोबारा नहीं बोल सकता हूं, आप वापस जा सकते हैं, ये मोल तो आपको चुकाना ही होगा। तो भरत दोबारा कभी उनको मां करके नहीं पुकार रहे थे। श्री संप्रदाय की टीकाकार, श्री संप्रदाय में कई आचार्यों ने रामायण के ऊपर टीका दी है, बहुत सुंदर टीकाएं दी है, क्योंकि जब तक आचार्यों के माध्यम से रामायण को नहीं सुनेंगे तो इन तत्वों को नहीं समझ पाएंगे कि माता कैके को धन्यवाद दे रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्य। वो कहते हैं माता कैके ने तो बहुत बड़ा योगदान दिया है श्री राम की लीला में। जब सीता अयोध्या में थी, राम के पास बहुत कम रह पाती थी, उनको राजा के रूप में भी देखना पड़ता था, केवल पति के रूप में नहीं थे राम वहां पर, उनके साथ प्रजा भी थी राम के साथ। तो कैकेयी ने जो व्यवस्था की उस कारण से अब सीता को मौका मिला राम के साथ रहने के लिए, केवल पति के रूप में वनवास में। तो कैकेयी को धन्यवाद देते हैं कि कैकेयी का बहुत बड़ा योगदान है कि और ज्यादा वो माधुर्य का आस्वादन कर पाए वन में रहकर। तो इस प्रकार आचार्यों की टीका से हम लोग समझ पाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भरत ने अपनी मां की बात को स्वीकार नहीं किया, परित्याग किया। भगवान गीता में यही कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। विभीषण ने अपने भाई का परित्याग किया, रावण का परित्याग किया, बलि महाराज ने अपने गुरु का परित्याग किया क्योंकि वो भगवान की सेवा से उनको रोक रहे थे, प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया, हिरण्यकश्यपु का परित्याग किया। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसका हमें परित्याग करना चाहिए। यही वास्तव में क्या है, लाभकारी है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर किसी का भी परित्याग करना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। और सबसे बड़ा तो अपना ही अहंकार है हमारा, उसका परित्याग करना बहुत आवश्यक है। और किसके चरणों में, गुरु के चरणों में। तो गुरु के चरणों में जब अपने मान को हम समर्पित करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम भगवान के बड़े प्रिय हो जाते हैं, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भगवान राम की तो अनंत लीलाएं हैं, अनंत कोटि लीलाएं हैं। इन लीलाओं का व्याख्या भगवान शंकरशन कर रहे हैं। और रामायण भी आप जानते हैं कि शिवजी ने पार्वती को सुनाया, शिवजी भगवान राम के वो भी अनन्य भक्त हैं। तो एक बार की घटना है, ये दक्षिण भारत की बात है जहां पर शिवलिंग साबित है, उस स्थान का नाम क्या है, रामेश्वर। तो ये जब शिवलिंग की स्थापना जब की, भगवान राम ने आराधना की, पूजा की, तो वहां पर जो एकत्रित लोग थे انہوں نے کہا شیو جی رام کے ایشور ہیں, شیو جی رام کے ایشور ہیں, شیو جی رام کے ایشور ہیں. سب نے ایسا بولا. آس پاس وہاں پر رشی منی آئے ہوں گے, وہ سب بولے اس طرح سے. تو دیوتاؤں لوگوں نے اس کا ورودھ کیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے, غلط کہہ رہے ہیں. رامش سو ایشور ہا, بولتے ہیں دونوں ہی ایشور ہیں, رام اور شیو دونوں ہی ایشور ہیں. رامیشور کا ارتھ یہ ہے. تو دیوتاؤں نے جب ایسا کہا تو کیا ہوا, اس سمے شیولنگ سے آواز آتی ہے. شیو جی سوئم بولتے ہیں نہیں, یہ سب غلط بول رہے ہیں, اس کا ارتھ یہ نہیں ہے. ایشورا س رامیشورا, رام رام یس ایشورا, رام یس ایشورا س رامیشورا. رام جن کے ایشور ہیں, رام کن کے ایشور ہیں, شیو جی کے ایشور ہیں. رام جن کے ایشور ہیں وہ ہے رامیشور. تو اس پرکار شیولنگ سے ہی آواز نکلی اور شیو جی نے سوامی یہ اسپشٹ کیا. پروپال مارننگ واک میں جا رہے تھے تو پروپال بتاتے ہیں کہ یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ مول رامائن میں یہ گھٹنا ہے یا نہیں, ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو جوڑا گیا ہو, کیونکہ یہ دکشن بھارت میں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو ٹیکا کار ہیں انہوں نے اس بات کو بعد میں جوڑا ہو. لیکن شنکا یکت ہے کہ مول رامائن میں ایسی گھٹنا ہے یا نہیں. تو ایک بھکت پروپال سے پرشن کرتا ہے وہاں پر مارننگ واک میں. اس بھکت نے پوچھا, شیشے نے پوچھا, پروپال ایسا تو نہیں ہے کہ رام نے اس لیے پوجا کی شیو جی کی کیونکہ وہ انمتی لے رہے تھے شیو جی سے راون کا ودھ کرنے کے لیے. راون شیو جی کے انانے بھکت ہیں, اس کارن سے تو پوجا نہیں کی پرمیشن لینے کے لیے. تو پروپاد ایک دم تتکال اتر دیتے ہیں, ڈو یو تھنک واس لارڈ شیوا سو راسکل ٹو گیو پرمیشن ٹو لارڈ رام. پروپاد ایک دم اتر دیتے ہیں. تو کہنے کا ارتھ یہ ہے, پروپاد کہتے ہیں اگر بات یہ سچ بھی ہے تو بھگوان اپنے بھکتوں کی سیوا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, جیسے ماتا یشودا کرشن کی سیوا کر رہی ہیں. اور سوئم کرشن نے سدھاما جی کے چرن دھوئے اور ارجن کا رتھ ہانکا. تو بھگوان تو ہمیشہ بھکتوں کی سیوا کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اس میں تو کیول سدھانت یہی ہے کہ بھگوان اپنے بھکتوں مریادا کا پالن کر رہے ہیں, مریادا کا پالن کر رہے ہیں اور اپنے بھکت کی پوجا کر رہے ہیں, آدر دے رہے ہیں وہ. کیونکہ آدر کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے بھکت کا وناش ہونے والا ہے, راون کا ود کرنے والے ہیں بھگوان رام. تو اس پرکار کئی لیلائیں ہیں. پربھوپاد نے زور دیا کہ ہم والمیکی رامائن ہی پڑھیں اور اس کا لابھ اٹھائیں. پربھوپاد سے پوچھا تھا اس بار لوک ناتھ مہاراج نے کہ پربھوپاد اب رامائن کا بھی انواد کریں گے کیا. تو پربھوپاد نے کہا پہلے مجھے بھاگوت پورا کرنے دو, اس کے بعد رامائن. تو اس لیے رامائن جو ہے ایسا گرنتھ ہے جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے, بہت ساری سکشائیں ہیں, سداچار آچرن ویوہار کس پرکار سے ہونا چاہیے یہ سکشا میں ملتی ہے, اور ان سکشاؤں کا پورا ہمیں لابھ اٹھانا چاہیے اس رام نومی کے اوسر پر. ہرے کرشن. کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ نرک جانا بھی پڑے تو تیار ہونا چاہیے اگر پرچار کے لیے بھیجا جائے آپ کو. پربھوپاد امریکہ گئے نرک نہیں تو کیا ہے. پربھوپاد نے لندن میں ایک رپورٹر نے پوچھا کین یو ڈسکرائب ہیلپ سوامی جی, پربھوپاد نے کہا دس از ہیل, گرین ہیل. یہاں پہ سوریہ نکلتا ہی نہیں ہے چھ مہینے کے لیے, لگاتار چھ مہینے بادل دکھائی دے رہے ہیں, بارش آتی رہتی ہے, یہ ہیل نہیں تو کیا ہے. دس از ہیل ہے نا, دس از ہیل, ہیلی ڈیلی اسمیلی, یہ بھی تو نرک ہے. تو حالانکہ ہمیں سیدھا مایاپور بڑا اچھا لگتا ہے, برندان بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن دلی میں رہنا پڑے گا, یہ دلی نرک ہے. ٹھیک ہے, تو اس پرکار سے سمجھنے کا پریاس کرو. اور کچھ دوبارہ پوچھیے, کیا پرشن ہے؟ وشیش کرپا کر رہے ہیں بھگوان آپ کے اوپر, وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی بات بتائیں. اپنے بھجنے کتھا یتھا تھا نہ کوئی بھی, نروتم داس ٹھاکر پریم بھکتی چندرکا میں لکھ رہے ہیں, اپنی بھجن کی کتھا یتھا تھا مت بولو, سب کو مت بتاؤ. मैं अनिर्जल रखता हूं एकादशी में, 64 माला करता हूं, तो उससे क्या होता है वो जो तपस्या का जो फल मिलना होता है वो नहीं मिलता फिर पूरा बोलने से। जितना आप गुप्त रखेंगे अपनी तपस्या को उतना अधिक आपकी शक्ति बढ़ेगी। मंत्र को जितना छुपाया जाता है उस मंत्र की शक्ति बढ़ती है, लेकिन महामंत्र जितना बांटा जाता है उसकी शक्ति बढ़ती है, है ना। तो कई बातें उसको गुप्त रखना पड़ता है। माला को हम लोग बीट बैग में गुप्त रखते हैं। गुरु का नाम भी बताते हैं हरि भक्तिलास में कि ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए, बहुत आदर से अगर बोलना भी पड़े बहुत आदर से ओम विष्णुपाद ऐसे शब्दों का उपयोग करके फिर गुरु का नाम लेना चाहिए। तो कई बातें होती हैं जिसमें गुप्त रखना पड़ता है, और गुप्त रखने से उसकी महत्वता बढ़ती है, उसकी शक्ति बढ़ती है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधिका रमण की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।